आशिका इशिका के साथ सुरक्षित मुंबई पहुंच चुकी थी। अगर इशिका और अभिमन्यु की दी गई सिक्योरिटी आशिका के साथ नहीं होती तो उसका इस तरह सेफली मुंबई पहुंचना बहुत मुश्किल था। उसके लिए स्काई के आदमियों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। मुंबई में कदम रखते ही आशिका ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट से कुछ ही देर में इशिका आशिका को लेकर अभिमन्यु के लग्जूरियस फ्लैट के अंदर पहुंची। आशिका नहीं जानती थी कि इशिका ने वो खास उसी के लिए तैयार करवाया है। उसे यही लग रहा था कि फिलहाल इशिका उसे अपने साथ लेकर जा रही है। घर के अंदर कदम रखते ही जैसे इशिका ने सिक्योरिटी पासवर्ड लगाकर दरवाज़ा खोला, फ्लैट के एंट्रेंस एरिया को आशिका के वेलकम के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ था। सामने अभिमन्यु इशिका का इंतज़ार करते हुए खड़ा था। आशिका वो सब देखकर हैरान रह गई। उसने इशिका की तरफ देखकर पूछा, क्या ये सब आपने मेरे लिए करवाया है? क्या तुम्हें अपने अलावा कोई और नई पर्सन यहाँ दिखाई दे रहा है? अब मना मत करना, जब तक तुम मुंबई में हो यहीं रहने वाली हो। इशिका ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को सहलाया। आशिका अभी भी मना करना चाहती थी, लेकिन इशिका ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, मुझे कोई बहस नहीं करनी है, चलो आओ तुम्हें अभिमन्यु से मिलाती हूँ। अभिमन्यु राजवंश को कौन नहीं जानता, आशिका ने जवाब दिया। वो दोनों बातें कर रही थीं तभी अभिमन्यु इशिका के पास आया और आते ही उसे हग कर लिया था। उसकी आंखें बंद थीं और वो इशिका को महसूस कर रहा था। उन दोनों को साथ में खुश देखकर आशिका मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लोगों को भले ही अभिमन्यु और इशिका के परफेक्ट और हैप्पी मैरिड लाइफ दिखती हो, लेकिन सच ये था कि उन्होंने साथ आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। आशिका उनकी कहानी के बारे में अच्छे से जानती थी। आशिका उनके प्राइवेट मोमेंट्स में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपने लगेज के साथ में दूसरी तरफ जाने लगी। उसने मन ही मन कहा, आपकी इस खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। इतनी तकलीफ सहने के बाद हर किसी को एक हैप्पी लाइफ मिलना नसीब नहीं होता है। मैं तो अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी सोच तक नहीं सकती। बस हाँ, मेरी जान बची रहे, मेरे लिए यही काफ़ी है। आशिका बालकनी में आ गई थी और आसमान की तरफ देखने लगी। वो फ्लैट बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर था। ऊपर से सी फेसिंग होने की वजह से सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। वहीं बाहर अभिमन्यु इशिका के गले लगे हुए था। उसने बंद आंखों से कहा, पूरे 3 दिन बाद आ रही हो तुम, तुमने 24 घंटे का नाम लिया था। हाँ तो तुम ट्रैवल टाइम कहाँ ऐड कर रहे हो, अब काम के लिए भी दूर नहीं जाऊंगी, इशिका ने उसे सहलाते हुए कहा। जाओगी तो तब ना, जब मैं कहीं जाने दूंगा, अभिमन्यु बोला और इशिका से अलग हो गया था। उसने इशिका के होठों पर हल्का सा किस किया। इशिका ने इधर उधर देखा, वो पहली बार उस घर में आई थी। अभिमन्यु की वेलकम की गई तैयारी सिर्फ आशिका के लिए नहीं बल्कि साथ में इशिका के लिए भी थी। वो घर वाकई काफ़ी खूबसूरत था। इशिका ने सिर हिलाकर कहा, वैसे अगर हमें मुंबई में ही रहना है तो ये जगह ज़्यादा बेहतर है, यहाँ हमें प्राइवेसी भी मिलेगी, क्यों ना यहीं पर रहें? बिल्कुल नहीं, हम राजवंश फैमिली में ही रहने के लिए चलेंगे। हालांकि मुझे भी उन लोगों से कुछ खास प्यार नहीं है, लेकिन अभिमान के चलते ऐसा करना पड़ेगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अचानक अभिमन्यु के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव उभर आए थे। इशिका ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, क्या वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है? पहले मैंने तुम्हारे मुंह से उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं सुना था। वो इसलिए क्योंकि मैं दूर रहकर उसका ध्यान रख रहा था। जैसे प्रशांत राजवंश है, वैसे ही हमारी फैमिली में आकाशदीप राजवंश है। देखा जाए तो राजवंश फैमिली के मर्द लगभग एक जैसे हैं, जिन्हें अपनी शादी में धोखा देने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अभिमान के मॉम डैड की तरफ से कभी से वो प्यार और सपोर्ट नहीं मिला। गलती निशा भाभी की नहीं है, लेकिन फिर भी अभिमान बहुत बुरे दौर से गुजरा है और ऐसे वक्त में आकर उसने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने तब भी उसे संभाला था और आज भी संभाल लूंगा। इसके लिए उसके साथ रहना जरूरी है। इशिका, मैं जानता हूं कि मेरी फैमिली काफी ट्रिकी है, लेकिन थोड़े दिन और झेल लेना, अभिमन्यु ने उसे सब बताया। अभिमन्यु पहले ही जानता था कि दूसरी राजवंश फैमिली भी उसकी राजवंश फैमिली की तरह ही थी। उसकी फैमिली का निशाना अभिमन्यु था तो दिग्विजय की फैमिली का निशाना अभिमान था। वहां भी हर रोज वैसे ही ड्रामे लगने वाले थे, इसलिए वो पहले से ही इशिका को तैयार कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, इसी बहाने सबसे मिलने का मौका मिल जाएगा, इशिका बोली। मिलने के नाम से उसे आशिका की याद आई, जिससे वो अभिमन्यु के आते ही भूल सा गई थी। इशिका ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे नहीं, मैं आशिका को तो भूल ही गई थी, उससे भी तो तुम्हें मिलवाना है। इशिका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में लेकर गई, जहाँ आशिका खोई हुई स्थिति में आसमान की तरफ देख रही थी। आशिका का ध्यान तब टूटा जब उसे अपने पीछे से अभिमन्यु की आवाज़ सुनाई दी। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहने वाली लड़की को अपने आसपास की ब्यूटी को देखने का टाइम भी मिलता होगा। हैकर्स तो काफी प्रैक्टिकल होते हैं, पर तुम मुझे इमोशनल लगी। अभिमन्यु की आवाज़ सुनते ही आशिका तुरंत उसकी तरफ पलटी। आशिका ने लूज पैंट्स, लूज टी शर्ट और ऊपर खुला शर्ट पहन रखा था। देखने में भले ही वो लड़की नजर आए, लेकिन उसके कपड़े लड़कों की तरह थे और आज तक उसने कभी ठीक से बनना संवरना नहीं सीखा था। आशिका की दुनिया एक बंद कमरे तक सीमित थी। आज पहली बार खुला आसमान इतने करीब से देख रही हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल हूँ और आसपास की खूबसूरती को नहीं देख पाई। बात टाइम की नहीं है, कभी मौका ही नहीं मिला सर, आशिका ने जवाब में कहा। उसका इंट्रोडक्शन देते हुए ईशिका बोली, अभिमन्यु ये वही है जिसने उस दिन हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। दूसरी बात, ऐश अब तक तुम्हारी लाइफ कितनी भी बुरी क्यों ना रही हो, लेकिन अब तुम हमारे पास हो तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी बनती है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैंने अपने ही नेफ्यू अभिमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे इनडायरेक्टली अडॉप्ट किया, उसके बाद हमारी बेटी रूही, तो अब तुम्हारी बारी है, अभिमन्यु हल्के लाशे में बोला, जिससे आशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो अभिमन्यु से पहली बार मिल रही थी, लेकिन उसका बर्ताव काफी नरम था। हालांकि उसने अब तक अभिमन्यु राजवंश के बारे में यही सुना था कि वो काफी ठंडे बर्ताव वाला घमंडी इंसान था। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था, आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। आपके साथ यहाँ रहकर अच्छा लगेगा, आशिका ने जवाब दिया। साथ रहने का नाम सुनकर अभिमन्यु और ईशिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो वहां पर नहीं रहने वाले थे। ईशिका ने गहरी सांस ली और आशिका के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ अभिमन्यु की फैमिली है और हम किसी काम के चलते मुंबई आए हैं आशिका, और हम वहीं पर रहने वाले हैं। लेकिन मैं अकेली, इतने बड़े घर में अकेले रहना अजीब होगा। मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता है, लेकिन इस घर के बेडरूम जितना मेरा पूरा घर था, आशिका हिचकिचाते हुए बोली। डरने की तो तुम्हें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुंबई का सबसे सेफ एरिया है। एनी टाइम सिक्योरिटी गार्ड नीचे मौजूद रहते हैं, और तुम्हें अपनी सेफ्टी को लेकर किसी तरह की चिंता है तो मैं एक्स्ट्रा गार्ड प्रोवाइड करवा दूंगा, अभिमन्यु बोला। ईशिका ने उसे आशिका और स्काई के बारे में पहले ही बता दिया था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, किसी को नहीं पता मैं यहाँ पर आई हूँ, आशिका ने जवाब दिया। ठीक है, और किसी को पता चलेगा भी नहीं, चलो आओ साथ में डिनर करते हैं, ईशिका ने कहा। अभिमन्यु ने पहले ही उनके लिए खाना बाहर से मंगवा लिया था। तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, तो वहीं राजवंश मेंशन में जैसे ही विक्रम को दिग्विजय से कॉल के जरिए ये पता चला कि अभिमन्यु और ईशिका उनके यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, तो वो टेंशन में आ गए।
विक्रम इस वक्त सिद्धांत के साथ में थे। उन्होंने उन्हें इस बारे में बताते हुए कहा, मुझे पहले ही लगा था पापा अभिमान का ही सपोर्ट करेंगे। मुझे प्रशांत का दूसरा बेटा कभी पसंद नहीं था। ज़रूर पापा ने अभिमान को सपोर्ट करने के लिए अभिमन्यु और ईशिका को यहाँ पर भेजा है। अभिमन्यु और ईशिका के आने की खबर सुनकर वो भी खुश नहीं था। सिद्धांत ने कुछ पल सोच विचार करने के बाद कहा, अगर वो दोनों यहाँ पर आए हैं तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूं दादू, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अभिमन्यु अभिमान की कंपनी में हमेशा से इन्वेस्ट कर रहा है। ऊपर से उसकी पत्नी फेमस रिसर्चर डॉक्टर मर्चेंट है। अभी अभी हमारी कंपनी ने न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने पैर फैलाने शुरू किए हैं। ऐसे में हमने उसे हायर कर लिया तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु हमें सपोर्ट करेगा, फिर भी तुम्हें लगता है तो देख लेना। दूसरी बात, उसे नाम से बुलाना बंद करो। उम्र में वो भले ही तुमसे छोटा हो, लेकिन रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता है, विक्रम ने सख्त लहजे में कहा। सिद्धांत ने उसकी बात की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। उनसे बात करने के बाद वो अपने कमरे में चला गया था। आशी ने सोचा था कि वो स्पा के बाद अभिमान से मिलने को जाएगी, लेकिन मानसी के अचानक आ जाने के बाद उसे अभिमान से मिलने का मौका नहीं मिला था। मानसी से मिलने के बाद सीधे वो अपने घर सिंघानिया मेंशन में पहुंची। जैसे ही आशी के कदम घर के अंदर पड़े, उसके कानों में एक सख्त आवाज़ आई। तो मेरे मना करने के बावजूद तुम अभिमान राजवंश के साथ पूरा दिन बिताने के बाद आ रही हो? वो आवाज़ सुनकर आशी के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसने आईज रोल की और बोरियत भरे लहजे में पीछे की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा उससे नफरत करने से हमारा रिश्ता बदल नहीं जाएगा। एक्सेप्ट कर लो कि वो इस घर का दामाद है। आशी के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जो उसकी उम्र का ही नजर आ रहा था। उसने तुमसे धोखे से शादी की थी, उसके बाद भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। अजीब बेवकूफ़ लड़की हो, उसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? वो इंसान पथेटिक है और जिसकी भी लाइफ में जाता है उसे बर्बाद कर देता है, उसने जवाब दिया। उसकी बातों से आशी चिढ़ गई थी। पहले ही उसके मॉम डैड काजल और आशुतोष सिंघानिया इस शादी को लेकर तैयार नहीं हो रहे थे। ऊपर से उसकी बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। आशी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे साथ उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरा इंसान है। मैं उससे प्यार करती हूँ, और प्लीज़ अपनी इन बातों से मॉम डैड का ब्रेन वॉश करना बंद करो। तुम्हारी वजह से वो अब तक मेरे और अभिमान की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। आखिर तुम भूल क्यों नहीं जाते जो सालों पहले हुआ था? अब मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें मेरी खुशियों का सोचना चाहिए, ना कि उस मरी हुई लड़की। आशी की बात पूरी होने से पहले ही उसके गाल पर कसकर थप्पड़ पड़ा। आशी जलती हुई निगाहों से अपने गाल पर हाथ रखकर उस लड़के की तरफ देख रही थी, उसी ने उसे थप्पड़ लगाया था। यज्ञ, आशी गुस्से में उसका नाम जोर से चिल्लाई, डोंट यू डेयर टू टॉक लाइक दिस। जिस लड़की को तुम मरी हुई कह रही हो, उसकी वजह से तुम जैसे अनाथ लड़की को एक अच्छी जिंदगी मिली है। मेरे मॉम डैड इमोशंस में आकर मेरी बहन का नाम तुम्हें दे सकते हैं, पर ना तो तुम मेरी लाइफ में उसकी जगह ले सकती हो और ना ही कभी वो बन सकती हो मेरे लिए। मेरी बहन आशिका सिंघानिया इस दुनिया से जा चुकी है। मॉम ने अपने दुखों को भुलाने के लिए लीगली तुम्हें मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ और नाम दे दिया, लेकिन तुम तो सच में खुद को आशिका सिंघानिया समझने लगी। मेरे लिए तुम हमेशा से वो लड़की रहोगी जिसे अडॉप्ट किया गया था, और तुम्हारा रियल नाम विहा है और वही रहेगा। रही बात अभिमान राजवंश की, तो उसकी वजह से मेरी बहन की मौत हुई है, तो उसे तो इस घर में मैं कदम भी नहीं रखने दूंगा। अब तक मॉम डैड के चलते मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन अगर तुमने उसके साथ जाना है तो इस घर से सारे रिश्ते तोड़कर चली जाना। यज्ञ ने उसे गुस्से में काफी कुछ सुना दिया था और फिर वहां से जाने लगा। यज्ञ कोई और नहीं, आशिका का ही जुड़वा भाई था, जो आज भी उसके जाने का दुख नहीं भुला पा रहा था। आशी यज्ञ की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसी की वजह से आज तक अभिमान को इस घर में कदम तक नहीं रखने दिया गया था।